वासुदेवाय। तो आज की क्लास के लिए थोड़ी सी लीला बोलेंगे, पर मेरी इच्छा थी कि चैतन्य चैतन्यता के दो अध्याय हैं, एक जिसमें अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन है उन श्लोकों को पढ़ा जाए, और एक लीला प्रस्तुत की गई है मध्य लीला के छठे अध्याय में, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु जी नित्यानंद जी के साथ अद्वैताचार्य के घर में गए थे प्रसाद स्वीकार करने, और कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि जो भी ये लीला सुनेगा तो उसके हृदय में भागवत प्रेम तेजी से बढ़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि अगर आप भक्त चाहते हो कि आप क्या है, इस शुभ अवसर पर हमें उस लीला को भी सुनना चाहिए, पर इतना समय शायद मेरे पास नहीं हो क्योंकि मुझे ऐसा 9 बजे तक जाना है। रिटन श्लोक लिख दिया, पहले हम उस श्लोक का उच्चारण करेंगे। ये कहां से आवा, जो कि चैतन्य चरितमृता में है, जिसमें बताया गया है चैतन्य महाप की अद्वैताचार्य जी कौन है। वैसे अद्वैताचार्य जी महाविष्णु के अवतार हैं, और इस श्लोक में इस विषय की स्थापना की गई है। हेलो प्रभु, आर यू रशियन? इज यू रशियन? टुडे आई टोल्ड देम टू गिव अ सेपरेट क्लास फॉर रशियन डिवोटीज, so Madan Mohan is giving a class in my room for Russian devotees in Russian. वो बेचारों को रोज क्लास समझ नहीं आती फिर। सो ये श्लोक है आदि लीला के छठे अध्याय का 4th श्लोक। महाविष्णु जगत कर्ता मायायां यहां श्रेजद याधा तस्यावतारं एवायं अद्वैताचार्यं ईश्वरं। महाविष्णु जगत्कर्ता मायायाः सृजत् यदः तस्यावतारा एवायाम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। महाविष्णु जगत्कर्ता मायायाः सृजत् यदः तस्यावतारा एवायाम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। महाविष्णु जगत्कर्ता मायायाः सृजत् यदः तस्यावतारा एवायाम् अद्वैताचार्य ईश्वरः।
अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना।
इस अध्याय में कई बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं, जिनके द्वारा अद्वैताचार्य का गुणगान किया जा रहा है, प्रशंसा। तो मैं सोच रहा था कि थोड़े श्लोकों को पढ़ा जाए, क्योंकि इनकी रचना कृष्णदास कविराज जी ने की है। ठीक है। ओम अज्ञातमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाक्या चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितान्येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदन्तिकम्। तो आज हम भक्तजन अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव तिथि मना रहे हैं, और थोड़े ही दिनों में अपनाओगे नित्यानंद जी का 4 तारीख को, और उसके अगले महीने मनाओगे चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव तिथि। तो चैतन्य चरितमृता अद्वैताचार्य के विषय में आप चैतन्य चरितमृता में पढ़ते हो, चैतन्य भागवत में पढ़ते हो, और अनेक और ग्रंथों में, और उनके शिष्य ने भी उनके विषय में एक ग्रंथ की रचना की है। तो चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास काव्यराज जी स्थापित करते हैं कि अद्वैताचार्य जी कौन हैं, वो महाविष्णु के अवतार हैं। और इसके अगले श्लोक में कहा गया है कि अद्वैताचार्य जो हैं वो हरि से अभिन्न हैं, उनका नाम अद्वैता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं। और आचार्य क्यों हैं? क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं भक्ति के विषय में। तो अद्वैताचार्य के जो गुण हैं उनकी गिनती करना सरल नहीं है। इस अध्याय में कृष्णदास काव्यराज जी आगे कहते हैं कि अगर हम हजारों जीवों से अद्वैताचार्य जी के गुणों का वर्णन करने का प्रयास करें तो भी हम सफल नहीं होंगे। और अद्वैताचार्य पृथ्वी पर क्यों आए थे, ये प्रस्तुत किया गया इसी अध्याय के 28वें श्लोक में। जीवा निस्तारा कृष्ण भक्ति करी दाना, गीता भगवते कैला भवतु व्याख्यान व्याख्याना। हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य आए थे पतितों का उद्धार करने के लिए कृष्ण भक्ति के माध्यम के द्वारा, और उन्होंने भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का जो उपदेश है उसका प्रचार किया। तो अद्वैताचार्य जी आए थे भक्ति का ज्ञान देने के लिए। जैसे कि अब थोड़ी देर पहले हमने ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे भजन गाया था, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी इस पृथ्वी पर आए थे किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं सब अवतारों में सबसे दया दयालु अवतार माने जाते हैं। और वह आगे कहते हैं कि सब पतितों में सबसे पतित कौन है, मैं हूं। और फिर वो नित्यानंद जी के से प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, आप तो खुश हो क्योंकि आपके हृदय में भक्ति भाव भरा हुआ है, पर मैं जो हूं अत्यंत दुखी हूं। और आगे वो प्रार्थना करते हैं, दया करो सीता पति अद्वैता गोसाई, कि सीता देवी जी के जो पति हैं जिनका नाम है अद्वैताचार्य, उनसे वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं आपकी कृपा प्राप्त होगी तो ही हमें चैतन्य निताय चैतन्य जी और नित्यानंद जी की कृपा प्राप्त होगी। तो हरिदास अद्वैताचार्य जो हैं स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं। इस विषय में कहा गया है कि उनकी माता का जो नाम था वो था लाभा देवी, और उनके पिता का नाम था कुबेर पंडित। तो उनकी माता ने एक समय एक सपना देखा जिसमें सदाशिव भगवान शिव जी का जो असली रूप है, उन्होंने एक सपने में कहा कि कलयुग की जो प्रजा है वो बहुत दुखी होगी और बहुत ही पतित, और 700 सालों के लिए इन्होंने तपस्या की थी इस विचार के साथ कि कोई उपाय प्राप्त हो जिसके द्वारा कलयुग की प्रजा का उद्धार हो सकेगा। और फिर सदाशिव जी गए महाविष्णु के चरणों में, और महाविष्णु जी ने कहा कि तुम्हारे में और मैंने मेरे में कोई अंतर नहीं। और फिर यही सदाशिव जी अवतारित हुए अद्वैताचार्य के रूप में। जबकि ये सपना चल रहा था, ये सपना देख रही थी उनकी माता, तो यमराज जी ने कहा अब आप आपके अवतार होने के पश्चात कोई पतित व्यक्ति रहेगा ही नहीं, सबका ही उद्धार हो जाएगा, तो मेरे लिए तो कुछ काम रहेगा ही नहीं। एक दफा प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे तो किसी रिपोर्टर ने पूछा, इफ एवरीवन गोज बैक टू गॉड हेड देन हु विल रिमेन हियर, अगर सब भगवान के धाम लौट जाएंगे तो इस पृथ्वी पर कौन रहेगा। प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी, एवरीवन विल नॉट गो बैक टू गॉड हेड। तो लाल बहादुर अद्वैत आचार्य की जो माता थी वो ये सपना देख रही थी और इस सपने में यमराज जी ने कहा कि अब अगर सारे व्यक्ति भगवान के धाम वापस चले जाएंगे तो यहां कौन रहेगा, मेरे लिए तो कुछ काम बचेगा ही नहीं। तो फिर महाविष्णु जी ने कहा चिंता मत करो, सब वापस नहीं जाएंगे, कई भक्ति को स्वीकार करेंगे और कोई भक्ति को स्वीकार नहीं भी करेंगे, तो इसलिए तुम्हारे लिए हमेशा काम रहेगा। तो कुबेरा पंडित जो थे वो थे अद्वैताचार्य के पिता, और चैतन्य चतुर्मिति में कहा गया है कि अद्वैताचार्य के अद्वैताचार्य अवतारित हुए थे किस लिए, भक्ति की स्थापना के लिए। और इस चैतन्य चतुर्मिति के छठे अध्याय में अनेक श्लोकों द्वारा ये स्थापित किया जाता है क्या कि अद्वैताचार्य जो हैं वो स्वयं भगवान हैं और वो अपने उदाहरण के द्वारा ये बताते हैं, ये स्थापित करते हैं कि किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी जब आए उन्होंने अपने उदाहरण द्वारा ये बताया कि किस प्रकार व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। तो अद्वैताचार्य की माता को पता था कि उनका जो पुत्र है वो स्वयं भगवान है और उनके जो पिता थे कुबेर पंडित ये बड़े विद्वान थे और कुबेर पंडित के और उनकी पत्नी के इनसे पहले अद्वैताचार्य से पहले 6 पुत्र हुए थे जिनमें से कि 4 ने संन्यास ले लिया था। बड़ा सौभाग्यशाली है, 6 पुत्र थे जिनमें 4 ने संन्यास ले लिया था और 2 जो थे उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। तो कुबेर पंडित एक रूप से ज्यादा दुखी थे कि 4 बच्चों ने संन्यास 4 बेटों ने संन्यास ले लिया था और वो नौकरी करते थे एक राजा के पास जिसका नाम था दिव्या सेना। ये एक स्थान था श्री हता नाम का जिसके वो राजा थे और ये जो उनके पिता थे कुबेर पंडित उनकी पत्नी के साथ गए थे शांतिपुर में। तो वहां उन्होंने मौन व्रत रखा था और इसके पश्चात अद्वैताचार्य की जो माता थी अद्वैताचार्य ने अपने माता के घर में अपने आप को प्रकट किया और जब वो माता के घर में थे माता को पता था कि अब परम भगवान अवतारित होने वाले हैं तो उनके चेहरे से ही दिख रहा था कि भगवान उनके घर में हैं। तो अद्वैताचार्य लगभग 60 साल के थे जबकि महाप्रभु जी ने अपने आप को प्रकट किया। इस आप देखते हो कि अद्वैताचार्य की तस्वीरों में दाढ़ी है क्योंकि अद्वैताचार्य लगभग 60 साल के थे जबकि महाप्रभु जी ने अपने आप को प्रकट किया। तो जब अद्वैताचार्य ने अपने आप को प्रकट किया था तो उनके खानदान के जो पंडित थे उन्होंने नाम दिया था कमलाक्ष और अद्वैताचार्य बचपन में जैसे नित्यानंदा जी और निमाई अपनी दिव्य लीला प्रकट करते थे, उन्होंने भी अनेक समय अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट की. इफ दे आर रशियंस, देयर इज अ रशियन क्लास गोइंग ऑन. आर दे रशियंस? यू ऑल कैन गो टू मदन मोहन गिविंग अ क्लास इन हिज रूम फॉर ऑल द रशियन डिवोटीज. इनको ले जाओ वहां. ओन मोदो पामोज, या take them to Madan Mohan's room near my room. He's giving a Russian class today, Ruski class, so take them there. To Advaita Acharya, unhone anek divya leela mein prakat ki thi. Ek samay unki mata ko ek sapna aaya tha. Unki mata ki ichha thi ki sab तीर्थ के स्थानों में यात्रा करने के लिए. तो उनकी माता को एक सपना आया था, और इस सपने में उनका जो बेटा है उनको श्रीहद इलाके में एक पहाड़ में ले गए थे जिसका नाम था बरूनी स्नाना. और वहां उन्हें यह सपना आया कि भारत के जितने भी पवित्र नदियां थी वो सब उनके पुत्र कमला लक्षा के सामने आए, और सारे पवित्र नदियों ने उनको प्रणाम किया, और उनके जल से उनकी माता ने स्नान किया. तो उनकी माता की इच्छा थी कि उन्हें अवसर प्राप्त हो सारे तीर्थ की नदियों में जाकर स्नान करने के लिए. और उनके पुत्र ने यह प्रबंध कर दिया कि सारे तीर्थ की नदियां आई और उनके जल से उनकी मां ने स्नान किया. तो कमला लक्षा जो थे उन्होंने बचपन में दिव्य लीला अपनी प्रकट की शिव जी के भाव में. एक समय जो राजा थे जिनका नाम था दिव्य सेना, जिनके राज्य में उनके पिता काम कर रहे थे, उनके बेटे के साथ वो खेल रहे थे. उनका बेटा था दुर्गा देवी जी का भक्त. तो उनके बेटे ने जरा वैष्णव भक्तों की जरा निंदा की, उनकी नकल की, उनकी हंसी उड़ाने लगा. तो जब वैष्णव भक्तों की हंसी उड़ा रहा था तो अद्वैत आचार्य इतने क्रोधित हो गए, क्रोध की आंखों से देखा कि उनका जो बेटा था राजा का वो बिल्कुल बेहोश हो गया. तो फिर अद्वैत आचार्य की कृपा से वो होश से वापस भी निकल गया. तो इस प्रकार एक समय वो गए थे दुर्गा देवी जी के मंदिर में, और अद्वैत आचार्य ने दुर्गा देवी जी के सामने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि अद्वैत आचार्य वो थे भगवान महाविष्णु के अवतार. तो जो राजा का बेटा था उसे गुस्सा आया. फिर अद्वैत आचार्य ने उस गुस्से से देखा तो राजा का बेटा जो था बेहोश हो गया, और फिर उसी मूर्ति से दुर्गा दी निकली और कहा पति जो है कभी पत्नी के सामने प्रणाम नहीं करता. मतलब ये स्थापित किया कि ये जो है स्वयं शिव जी है. तो इस प्रकार फिर उन्होंने छोटी उम्र में ही कृष्ण भगवान की महिमा का गुणगान किया. वो जो राजा थे फिर वो बहुत बड़े वैष्णव और संत बन गए, और उन्होंने अद्वैत आचार्य से बाद में दीक्षा भी ली. तो अद्वैत आचार्य जो थे शुरू से ही उन्होंने कृष्णा भक्ति का प्रचार किया, और अपने जो क्लास के साथी भी थे उन्हें भी ये कृष्णा का ज्ञान देते थे. उन्होंने पहले शिक्षा प्राप्त की थी संत आचार्य नाम के एक संत थे, उनके द्वारा उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी. तो एक समय उनके संत आचार्य जी जा रहे थे अपने विद्यार्थियों के साथ, तो एक तालाब के पास पहुंचे और उस तालाब के बीच में एक कमल का फूल था और इस तालाब में अनेक सांप थे, जहरीलू सांप। तो गुरु और उनके अध्यापक ने कहा, संत आचार्य ने, कि इस तालाब के बीच में जो कमल का फूल है वो निकाल कर दो। सारे विद्यार्थी डर रहे थे अंदर जाने से, पर कमला लक्ष्य एकदम अंदर गए और बड़े आसानी से वो कमल का फूल, हालांकि उस तालाब में जहरीलू सांप वगैरह थे, उस कमल के फूल को उठाकर वो ले आए। तो जबकि कमला लक्ष्य हो गए थे 17-18 साल के, उनके पिता माता थे लगभग 80 साल के, तो इस पृथ्वी से प्रकट हो गए थे। तो अद्वैत आचार्य ने प्रचार तो अपना शुरू कर दिया था और उनके पिता के और माता के देहांत के पश्चात उन्होंने सारे तीर्थ के स्थानों की यात्रा की और उन्होंने ये बड़ा श्राद्ध का प्रबंध किया था। उन दिनों में श्राद्ध के समय सारे ब्राह्मणों को वगैरह निमंत्रण दिया जाता था और अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर के साथ शांतिपुर में रहकर गंगा नदी की उपासना भी कर रहे थे और सारेगम शिला की पूजा। तो अद्वैताचार्य ने श्राद्ध का प्रबंध किया था और उन्होंने उस सभा में अनेक ब्राह्मण थे, भट्टाचार्य चतुर्वेदी सब ब्राह्मण उपस्थित थे और सब ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको बुलाया जाएगा और खास इज्जत दी जाएगी। ये विवाद था कि सब ब्राह्मणों में जो सबसे प्रसिद्ध है उन्हें बुलाया जाता था, खास आसन दिया जाता था और प्रसाद। तो अनेक ब्राह्मण वहां उपस्थित थे पर अद्वैताचार्य ने हरिदास ठाकुर जो कि बाहर बैठे थे एक कोने में, उन्हें बुलाकर खास वो स्थान दिया और सबसे पहले प्रसाद उन्हें भोग में दिया। जब दूसरे ब्राह्मणों ने देखा कि हरिदास ठाकुर जो मुसलमान हैं, वो हरिदास ठाकुर तो उस आसन उस कमरे में आ रहे भी नहीं थे, वो बाहर बैठे थे। जब उन्होंने दूसरे ब्राह्मणों ने देखा कि इन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाकर एक खास स्थान दिया है, तो सारे ब्राह्मण जो है उन्होंने अपमान महसूस किया। उन्होंने कहा, इसने हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी है। वो सब उठकर बाहर चले गए पर अद्वैताचार्य ने इसकी चिंता नहीं की क्योंकि उन्हें पता था कि अद्वैत हरिदास को प्रसाद खिलाना लाखों ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर था। क्योंकि अद्वैताचार्य शुरू से ही, जैसे हमने चैतन्य चतुर्मृत के श्लोक के द्वारा बताया था, शुरू से ही वो कृष्ण का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने उनके पिता जिस राजा के पास काम कर रहे थे उस राजा को भी वैष्णव संत बनाया और शुरू से ही वो गीता और भागवत का उपदेश दे रहे थे। तो अद्वैताचार्य ने जब हरिदास ठाकुर को बुलाकर एक खास आदर दिया और प्रसाद दिया, तो जो दूसरे ब्राह्मण जो थे उस सभा में सबने बड़ा अपमान महसूस किया और सब उठकर बाहर चले गए। फिर जब वो बाहर गए तो वो समझ पाए क्या, उन्होंने कहा, सोचा कि अद्वैत आचार्य तो सब सिद्धांत को अच्छी तरह जानता है, बचपन से ही वो भागवतम और गीता का उपदेश देते आ रहा है। तो सब फिर उठकर वापस आए और उन्होंने अद्वैताचार्य से माफी मांगी। अद्वैताचार्य ने यह स्थापित किया कि जो व्यक्ति भजन करता है, हरि नाम का उच्चारण करता है, वो जो है सबसे ऊंचे भाव का भक्त। ये नहीं केवल जो संस्कृत के श्लोकों को जानता है पर जो कि सेवा में जुड़ा है। तो अद्वैताचार्य ने एक तीर्थ के स्थानों की यात्रा की, भारत के जितने तीर्थ के स्थान हैं सब जगह यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान वो मिले माधवेंद्रपुरी से, जिनसे उन्होंने फिर बाद में दीक्षा ली थी। और अद्वैताचार्य जब मिले माधवेंद्रपुरी से तो दोनों ने इस विषय की चर्चा की कि इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है लोगों के उद्धार के लिए, केवल एक ही साधन है, वो क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो माधवेंद्रपुरी को वो मिले थे उदिपी में, और उनको मिलने के पश्चात अद्वैताचार्य अपनी यात्रा करते गए भारत के सब तीर्थ के स्थानों पर, और फिर ये यात्रा करके, तो यात्रा के दौरान में वो यहां भी आए थे वृंदावन में, और जब वो वृंदावन में आए तो उन्हें एक सपना आया था। जब वो वृंदावन में आए वो सपना आया था, और सपने में मदन मोहन का जो विग्रह है, एक दिन अद्वैताचार्य जी एक केले के पेड़ के नीचे सो रहे थे, और जब वो इस पेड़ के नीचे सो रहे थे तो उन्हें एक सपना आया जिसमें एक मूर्ति ने कहा कि मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए मुझे छुपाया गया है इस स्थान में, तुम जाकर इस स्थान से मुझे प्राप्त करके मेरी स्थापना करो। तो अद्वैताचार्य अगले दिन सुबह गए और उस स्थान से उस मूर्ति को लाए, और उस मूर्ति की फिर उन्होंने एक स्थापना की। पर स्थापना करने के बाद फिर उस इलाके में मुसलमान लोग आ रहे थे, तो उस मूर्ति ने अपने आप को छुपा दिया फूलों के नीचे, तो मुसलमान लोग नहीं देख सके। तो फिर अद्वैताचार्य जब वो वृंदावन में थे, उन्हें फिर से सपना आया कि अब मुसलमानों से बचने के लिए मुझे फूलों के नीचे छुपाया हुआ है। तो फिर अद्वैताचार्य फिर उस मूर्ति को उस स्थान से निकालकर उनका अभिषेक किया, उनका रूप जो था वो चमकने लगा, और फिर अद्वैताचार्य ने ये मूर्ति दी थी एक चोबे नाम का एक ब्राह्मण था मथुरा में, जिनसे सनातन गोस्वामी जी का परिचय हुआ था। बाद में सनातन गोस्वामी घर घर जाकर मधुकरी करते थे, और इसके दौरान एक ब्राह्मण में के घर में गए थे जहां की उन्होंने इस विग्रह का दर्शन लिया। वो आकर्षित हो गए थे इस विग्रह के प्रति, उनकी इच्छा थी कि इस विग्रह की उपासना की जाए। शुरू में तो इस ब्राह्मण ने दिया नहीं, फिर मदन मोहन जी सपने में आए, है ना, उस ब्राह्मण को सपने में आए, और ठाकुर जी ने कहा कि ये जो ब्राह्मण आया था मधुकरी करने के दौरान, जिसने ये मांगा था कि आप मुझे धो दे दो। फिर सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी की इसी मूर्ति की स्थापना की, उनकी उपासना शुरू की। बिल्कुल यमुना के किनारे एक छोटी सी कुटिया में, और उस समय तो उनके पास ज्यादा सुविधा नहीं थी। वैसे तो जब सनातन और रूपक गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के राज्य में सेवा कर रहे थे, धन की कोई कमी नहीं थी। जब रूपक गोस्वामी जी ने अपनी सरकारी नौकरी त्यागी तो उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी, पूरी नाव भरी थी सोने के सिक्कों के साथ। फिर उन्होंने इस संपत्ति को बांटा ब्राह्मणों में, अपने रिश्तेदारों में इत्यादि। पर जब वो वृंदावन में आए तो दोनों ने बिल्कुल सन्यासी त्याग का जीवन बिताया और मधुकरी करके भोजन भी खाते थे। तो सनातन गोस्वामी जी इसी मदन मोहन विग्रह जिनको जिनकी स्थापना पहले अद्वैताचार्य ने की थी, उसी मदन मोहन मूर्ति की पूजा कर रहे थे। एक छोटी सी झोपड़ी में उनकी पूजा कर रहे थे तो एक समय एक नमक का व्यापारी अपनी नाव में जा रहा था, जिसकी नाव उनकी कुटिया के सामने फंस गई मिट्टी में। तो उस व्यापारी ने देखा चारों ओर अंधेरा है, उसके हृदय में भय था। रात का समय, शाम का समय था, डाकू लोग आकर चुरा नहीं लें। तो गया इस मदन मोहन विग्रह जिनकी पूजा सनातन गोस्वामी जी कर रहे थे एक झोपड़ी में, और वहां जाकर उसने अपनी प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना करके निकले तो नाव जो है उनकी उस मिट्टी से खुद ही निकल गई थी और आगे चलने लगी। तो फिर वो व्यापारी ने जाकर काफी पैसा कमाया। जब वह पैसा लेकर आए और सनातन गोस्वामी को दिया तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम मंदिर बनाओ। फिर उन्होंने कौन सा मंदिर बनाया? मदन मोहन जी का मंदिर बनाया। तो यही मूर्ति सबसे पहले प्राप्त हुई थी अद्वैताचार्य को, जबकि वो तीर्थ के स्थानों की यात्रा कर रहे थे और जब वो मथुरा में आए थे। तो माधवेन्द्रपुरी के द्वारा उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। वैसे तो वो परम भगवान थे, पर भगवान भी जब पृथ्वी पर आते हैं दीक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे कि परम भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की संदीपनी मुनि से, चैतन्य महाप्रभु जी ने किससे ग्रहण की? ईश्वरपुरी से। तो ईश्वरपुरी भी और अद्वैताचार्य दोनों ही माधवेन्द्रपुरी के प्रसिद्ध शिष्यों में थे। तो माधवेन्द्रपुरी ने अद्वैताचार्य को ये आदेश दिया था कि तुम विवाह करो ठाकुर जी की देखभाल के लिए। तो माधवेन्द्रपुरी अद्वैताचार्य के साथ गए थे शांतिपुर में, जहां के एक महीने के लिए उन्होंने बकायदा शिक्षा दी थी भक्ति के विषय में अद्वैताचार्य को। और अद्वैताचार्य शांतिपुर के सबसे प्रसिद्ध वैष्णव बन गए। एक समय एक बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान था, जैसे आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो कि एक संस्कृत का विद्वान था जिनका नाम था केशव कश्मीरी, जो कि जिसने कि भारत के सभी विद्वानों को हरा दिया था। वो केशव कश्मीरी आया था नवद्वीप में, जहां की वो मिले चैतन्य महाप्रभु जी से, और चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें चर्चा में हरा दिया था। केशव कश्मीरी ने महाप्रभु जी के कहने पर गंगा नदी की प्रशंसा की 100 श्लोकों के द्वारा। पर जब उसने महाप्रभु जी से पूछा आपको कैसे लगा ये सब, और महाप्रभु जी ने उनके नुक्स सुनाए, तो उत्तर नहीं दे पाए। और फिर जब अगले उस रात को सारस्वती देवी जी ने सपने में कहा कि ये संस्कृत का विद्वान निमाई पंडित साधारण व्यक्ति नहीं, वो स्वयं भगवान है, तो अगले दिन केशव कश्मीरी जो है निमाई पंडित के शरणागत हो गए। तो उसी प्रकार जब अद्वैताचार्य ने भी अपना प्रचार शुरू किया, एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे जिन्होंने भारत में लगभग सब पंडितों को हरा दिया था। तो वही संस्कृत के विद्वान जब शांतिपुर में आए तो अद्वैताचार्य ने उनको बड़ी आसानी से हराया। और फिर उस ब्राह्मण को सपना आया और उस सपने में भगवान ने कहा कि ये जो ब्राह्मण है ये साधारण नहीं व्यक्ति नहीं, ये स्वयं भगवान है। तो इसके दौरान, यात्रा के दौरान अद्वैताचार्य का परिचय हुआ हरिदास ठाकुर से, और हरिदास ठाकुर को अद्वैताचार्य ने ले निमंत्रण दिया था शांतिपुर में आने के लिए, और उन्होंने एक खास स्थान बनाया था जहां की अद्वैताचार्य और हरिदास रोज सुबह के दिन भर कीर्तन और भागवतम और गीता का उपदेश, सारा दिन हरिनाम और भागवतम और गीता का की चर्चा, और कोई कार्य नहीं था। और दोनों की क्या प्रार्थना थी, उनकी ये इच्छा थी कि परम भगवान अवतारित हो, किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। तो बड़ी गहराई के साथ उनकी उपासना के कारण परम भगवान ने फिर अपने आप को प्रकट किया, किस रूप में, चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। और जबकि चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने आप को प्रकट किया, अद्वैताचार्य की आयु कई ग्रंथों में कहा गया 52 था, कई कहते हैं 60 साल, पर 50 और 60 के बीच में थे। तो अद्वैताचार्य महाप्रभु जी से भौतिक दृष्टि से 50 या 60 साल ज्यादा बड़े थे। तो जब अद्वैताचार्य शुरू में तो निमाई संस्कृत के विद्वान थे, तो जब उन्होंने अपना संकीर्तन का आंदोलन आरंभ किया था शांतिपुर में, उस समय निमाई की ज्यादा रुचि नहीं थी उस संकीर्तन आंदोलन में। हालांकि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान थे, पर वो अवतारित हुए थे किस रूप में, भक्त के रूप में, और उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन बाद में आरंभ किया। तो जब अद्वैताचार्य और हरिदास ने संकीर्तन कर रहे थे, उन दिनों में महाप्रभु जी की रुचि नहीं थी इस विषय में। तो अद्वैताचार्य ये महाप्रभु जी के कई साथियों को भी दीक्षा दी, जैसे वासुदेव दत्ता, भगवत आश्रय, यदुनंदाचार्य जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी के गुरु थे, जिनके विषय में चर्चा की थी थोड़े दिन पहले। तो महाप्रभु जी के जो माँ बाप थे उनको भी दीक्षा अद्वैताचार्य ने दी थी। जब निमाई छोटे थे तो एक समय उन्होंने माँ से दूध पीना बंद कर दिया, माता के स्तन से दूध पीना बंद कर दिया। जब निमाई ने माता के स्तन से दूध पीना बंद कर दिया तो माता बड़ी चिंतित है, बेटा दूध ही नहीं पी रहा। तो जितने नवोदय में डॉक्टर वगैरह थे सबके पास गए, सबने कहा पता नहीं क्या कारण है आपका बेटा आपके स्तन से दूध नहीं पी रहा। फिर वो गए अद्वैताचार्य के पास। अद्वैताचार्य ने कहा कि आपका बेटा केवल प्रसाद ही पीना चाहता है और आप दोनों ने अभी तक दीक्षा नहीं ली है। फिर अद्वैताचार्य के कहने पर सच्ची देवी और जगन्नाथ मिश्रा ने अद्वैताचार्य से दीक्षा ली, और जैसे ही दीक्षा ली बेटे ने स्तन से दूध पीना फिर से शुरू कर दिया। तो अद्वैताचार्य जैसे सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा के भी हो गुरु थे। अब अद्वैताचार्य जो थे उनके हृदय में कोई शंका नहीं थी कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, आखिर चैतन्य महाप्रभु जी अवतारित हुए हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य की प्रार्थना के उत्तर में। तो अद्वैत आचार्य हमेशा महाप्रभु जी को बहुत ही आदर देते थे। पर महाप्रभु जो हैं, उन्हें पता था कि अद्वैत आचार्य जो है, एक तो भौतिक दृष्टि से आयु में उनसे 60 साल बड़े थे, साथ में उनके माता पिता के भी वो गुरु थे। तो महाप्रभु जी अपनी तरफ से हमेशा प्रयास कर रहे थे कि अद्वैताचार्य को खास आदर दिया जाए, पर अद्वैताचार्य इससे खुश नहीं थे। तो अद्वैताचार्य ने सोचा कोई साधन हो जिसके द्वारा मुझे महाप्रभु जी से डांट पड़े। तो अद्वैताचार्य ने मायावादी सिद्धांत का प्रचार आरंभ जा रहे हो अद्वैताचार्य ने मायावादी सिद्धांत का महामंत्र एक बहुत बड़ी योजना में है। आशीर्वाद हो सब। हाँ, तो अद्वैताचार्य जो है वो हमेशा महाप्रभु जी को आदर देते थे, और महाप्रभु जी जो थे अद्वैताचार्य को आदर देते थे। पर अद्वैताचार्य के हृदय में हमेशा ये था, ये स्वयं भगवान है, ये मुझे क्यों इतना आदर दे रहे हैं। आखिर आज श्रीवास ठाकुर के घर में ये महाप्रभु जी ने अपना खास विराट रूप जब प्रकट किया था, तो उन्होंने ये अद्वैताचार्य को भी प्रकट किया था। अद्वैताचार्य के हृदय में तो कोई शंका नहीं थी। तो अद्वैताचार्य ने मायावादी सिद्धांत का प्रचार आरंभ कर दिया। अद्वैताचार्य ने ये कहना शुरू कर दिया कि ज्ञान भक्ति से ज्यादा ऊंचा है। तो जब ये सूचना पहुंची महाप्रभु जी को, तो उन्होंने पहले नित्यानंद जी से पूछा, क्या यह सत्य है कि अद्वैताचार्य इस प्रकार का प्रचार कर रहा है? तो नित्यानंद ने कईयों से पूछा, सबने कहा हाँ, पर सब आश्चर्य हो गए ये सुनकर कि अद्वैताचार्य ने मायावादी सिद्धांत का उपदेश देना आरंभ कर दिया। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो अपने प्रचार के द्वारा अनेक मायावादियों को भी आकर्षित किया भक्ति की शिक्षा के प्रति। और उन्होंने क्या कहा चैतन्य महाप्रभु जी ने, मायावादियों से बच कर रहा। तो चैतन्य महाप्रभु जी को पता लगा कि अद्वैताचार्य ने ये प्रचार शुरू कर दिया, इसके द्वारा उन्हें बहुत गुस्सा आया। और एक दिन जब वो नित्यानंद जी के साथ थे, उन्होंने क्या किया, अपने पैर से उनकी पीठ पर मारा। जब अद्वैताचार्य ने, उनकी जो पत्नी थी उन्हें पता था ये अद्वैताचार्य का नाटक है चैतन्य महाप्रभु जी को क्रोधित करने के लिए, तो जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पैरों से उनकी पीठ को मारा, तो अद्वैताचार्य बहुत खुश हुए और वो खुशी में नाचने लगे। उन्होंने कहा कि यही थी मेरी इच्छा कि आप मुझे इतना आदर देते हो, पर आप स्वयं भगवान हैं, मैं इतना आदर का अधिकार नहीं, मुझे नहीं है। तो फिर उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए, और चैतन्य महाप्रभु जी भी समझ पाए कि इनका क्या महत्व था। तो अद्वैताचार्य का काफी प्रभाव था महाप्रभु जी पर महाप्रभु जी की जो माता थी सची माता, उनके हृदय में शोक था। किस विषय का शोक था? कि बड़ा बेटे ने संन्यास ले लिया, छोटे बेटे ने भी संन्यास ले लिया। तो और वो सोच रही थी कि शायद ये संन्यास की प्रेरणा मेरे दोनों पुत्रों को अद्वैताचार्य द्वारा प्राप्त हुई है। जैसे कि दक्षा के पुत्र गए थे नारायण सरोवर में, पर नारद मुनि जी की प्रेरणा से वो घर लौटे नहीं। तो अद्वैताचार्य के प्रति उनकी माता के हृदय में हमेशा थोड़ा क्रोध था। चैतन्य महाप्रभु जी जो वैसे सब अवतारों में सबसे दया दयालु हैं, और उन्होंने बिना भेदभाव के यह हरि नाम का उपदेश, हरि नाम का प्रचार हर जगह किया। पर जो महाप्रभु जी के साथी थे वो कहते थे कि आप सब पर कृपा कर रहे हो, अपनी माता पर कृपा क्यों नहीं कर रहे? तो महाप्रभु जी कहते थे मेरी माता ने अपराध किया है। क्या अपराध? अद्वैताचार्य के प्रति उनके हृदय में क्रोध है। तो जब अद्वैताचार्य ये सुनते थे वो कहते थे अरे भाई ये तो भगवान की माता है, ये कैसे अपराध कर सकती है। और चैतन्य भागवत में कहा गया जैसे कि एक समय भगवान को सिरदर्द हो रही थी, भगवान ने कहा उद्धव से क्या ये सिरदर्द दूर होगी अगर धूली मेरे भक्तों के चरणों की धूली मुझे मिले बाम के रूप में। जैसे आपको सिरदर्द हो तो आप बाम लगाते हो। तो अद्वैताचार्य ने कहा मान लो अगर उसने अपराध किया भी है तो मैं उसे माफ करता हूं। पर चैतन्य महाप्रभु जी के हृदय में ये दुख था कि उनकी माता के हृदय में अद्वैताचार्य के प्रति गलत विचार है। तो उनकी माता ये अवसर देख रही थी कब उन्हें मौका मिले माफी मांगने के लिए। और फिर एक समय जब महाप्रभु के सामने सब जब महाप्रभु जी ने यह देखा तो वो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अब मेरी माता को भगवत प्रेम प्राप्त होगा क्योंकि अब उन्होंने उस अपराध जो किया था उसका उसके लिए माफी मांग ली है उनके चरणों में चरणों की धूल लेकर। तो एक समय जब चैतन्य महाप्रभु जी आ रहे थे वृंदावन की ओर, नित्यानंदा जी ने उनको प्रभावित करके वहीं रखा बंगाल में, और 10 दिन के लिए चैतन्य महाप्रभु जी और अद्वैताचार्य वो आए थे। कहाँ वो आए थे? अद्वैताचार्य के घर में रहने के लिए। असल में मैं चाहता था ये आपको पढ़कर सुनाया जाए पर शायद इतना समय नहीं है तो क्योंकि अभी सराहना हो गया। तो 10 दिन के लिए चैतन्य महाप्रभु जी आए थे अद्वैताचार्य के घर में, और साथ में नित्यानंदा जी भी आए और दूसरे वैष्णव भक्त। तो अद्वैताचार्य की पत्नी क्या नाम था? सीता। उन्होंने बहुत अच्छा भोजन का प्रबंध किया था और प्रेम से अद्वैताचार्य की महाप्रभु जी की प्रशंसा के लिए बहुत काफी चीजें बनाई थी। जैसे कि आप पढ़ते हो कि जब चैतन्य महाप्रभु जी सर्वभौम भट्टाचार्य के घर गए थे भोजन खाने के लिए तो उनकी पत्नी ने भी अनेक प्रकार की सब्जियां चावल मीठी चीजें बनाई थी। और सर्वभौम भट्टाचार्य खुद दरवाजे पर खड़े रहते थे, किस लिए? कि उनका दामाद जो दमोगा था उसकी नजरों से उनके प्रसाद को दूर रखने लगे। तो सीता देवी जी ने महाप्रभु जी और नित्यानंदा जी के लिए बहुत अच्छा प्रसाद का प्रबंध किया था। चैतन्य महाप्रभु जी ने जब इतना प्रसाद देखा, इतनी सब्जियां मीठी चीजें वगैरह, उन्होंने कहा मैं तो ये खा नहीं सकता, मैं तो सन्यासी हूं, मुझे तो थोड़ा सा चाहिए केवल खाने के लिए, ये तो बहुत ज्यादा आपने बना दिया है। तो महाप्रभु जी हिचक रहे थे। महाप्रभु जी ने कहा मुझे बिल्कुल थोड़ा चाहिए। तो अद्वैताचार्य ने कहा, आप तो जगन्नाथपुरी मंदिर में 100 से ज्यादा चीजों को खाते हो दिन में, कितनी बार? अब 56 बार दिन में खाते हो जगन्नाथपुरी मंदिर में 100 से ज्यादा सब्जियां, मीठी चीजें वगैरह। तो यहां तो मैं आपको केवल एक ही बार भोजन खिला रहा हूं। और नित्यानंद जी भी आए थे अद्वैताचार्य के घर में। नित्यानंद जी कहने लगे, मैंने तो 3 दिन से खाया नहीं है, मैं भूखा हूं 3 दिनों से, और ये जो भोजन तुमने बनाया है, प्रसाद बनाया है, ये तो कुछ नहीं है मेरे लिए, ये तो बहुत थोड़ा है मेरे लिए। तो यहां महाप्रभु जी कह रहे थे, बहुत ज्यादा भोजन बना दिया है, मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा ही चाहिए। और अद्वैताचार्य जी कह रहे थे, क्या आप तो नहीं? अद्वैताचार्य ने कहा चैतन्य महाप्रभु जी से, आप कहते हैं आपके लिए बहुत है, पर आप तो जगन्नाथपुरी मंदिर में 100 से ज्यादा सब्जियों को वगैरह को खाते हो 56 दिन में। और नित्यानंद जी ने जब इतना प्रसाद देखा तो उन्होंने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं तो 3 दिन से भूखा, मुझे तो और प्रसाद चाहिए। तो फिर हर अद्वैताचार्य ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपने तो संन्यास का धंधा, संन्यास अपनाया है, सिर्फ अलग अलग लोगों से खाना खाने की भीख मांगने के लिए। मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास और शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार 10 दिन के लिए चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद जी अपने साथियों के साथ रहे कहां, अद्वैताचार्य के घर में। सारा दिन कीर्तन किया जाता था, जैसे श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु जी सारा दिन कीर्तन करते, सारा दिन कीर्तन होता था और प्रसाद का वितरण। तो 10 दिन के लिए चैतन्य महाप्रभु जी रहे थे, फिर उसके पश्चात अद्वैताचार्य के कहने पर 4 दिन और वहां रुके, और चैतन्य चतुर्मृता में अद्वैत ये कहते हैं, ये चैतन्य चतुर्मृता में कृष्णदास कविराज जी ने कहा है कि अगर हम इस कथा को सुने, कथा जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु जी ठहरे थे अद्वैताचार्य के घर में, तो इस कथा को सुनने से हमारे हृदय में भागवत प्रेम बढ़ेगा। तो मैं सोचा था अगर ये पूरी कथा पढ़कर सुनाई जाए, पर उसमें काफी समय लग जाएगा, तो हमने ये पूरा अध्याय मध्य लीला के 3rd अध्याय में। तो 12 दिन के लिए, 14 दिनों के लिए चैतन्य महाप्रभु जी अद्वैताचार्य के घर में रुके, और सारा दिन वो कीर्तन कर रहे थे। और फिर उनकी पत्नी बड़े प्रेम के साथ ये प्रसाद बना रही थी, और अद्वैताचार्य नित्यानंद जी और चैतन्य महाप्रभु जी और उनके साथियों के लिए। तो आज अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। आप भक्तों को अद्वैताचार्य से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करके उनकी कृपा प्राप्त हो, जिसके द्वारा हम भक्ति में और भी तेजी के साथ बढ़ सके। और अद्वैताचार्य का क्या था आदेश? उनका आदेश ये था कि हमें हरि नाम को अपनाना चाहिए और साथ में भागवतम और भागवत गीता का अध्ययन। बड़े स्पष्ट रूप से इस विषय की स्थापना की गई है चैतन्य चरितमृता में। तो हम भक्तों को गंभीरता के साथ अद्वैताचार्य की शिक्षा को अपनाना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए, और इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होगी? अद्वैताचार्य की कृपा। और जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, अद्वैताचार्य की कृपा के द्वारा ही हमें नित्यानंद जी की कृपा प्राप्त होगी, और उनकी कृपा के द्वारा ही हमें चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त होगी। तो और ये कृपा कैसे प्राप्त होती है? ये कृपा प्राप्त होती है जितनी मात्रा से हम भगवान के शरणागत होने का प्रयास करते हैं। तो खास करके आज इस शुभ अवसर पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम और भी अधिक जाप करें और भगवतम और गीता पढ़ें और अद्वैताचार्य के विषय में आप चैतन्य भगवत और चैतन्य चतुर्मिता में पढ़ सकते हो. लाइब्रेरी में भी, इन लाइब्रेरी में भी चैतन्य चतुर्मिता है हिंदी में. तो आप सब इसको पढ़ेगा. और मैं सोच रहा हूँ शाम को गीता क्लास की बजाय आप ये चैतन्य चतुर्मिता के उन अध्यायों से पढ़ सकते हो जहाँ की अद्वैताचार्य जी की लीलाओं का वर्णन है. हाँ, शाम को अद्वैताचार्य की, अद्वैताचार्य आविर्भाव थी लिखी और
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की.
हरे कृष्ण.